सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सभी साथ में बोलेंगे यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तो यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ
जो बोलो परम पूज्य अक्षा गुरु श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की जो बोलो परम पूज्य अक्षा गुरु श्री ऋषभ सागर जी मुनि महाराज की मुनि संघ की हे भगवान नमोस्तु हे स्वामी नमोस्तु हे रत्नंद्रधारी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
धर्म करते हुए संसार सुख की इच्छा करना आवश्यक नहीं है। अज्ञानतावश संसार सुख की इच्छा से कोई जीव यदि धार्मिक कार्य करता है तो वह बहुत व्यर्थ है। व्यर्थता का कार्य मिथ्या कार्य कहलाता है और ऐसा कार्य अज्ञानी जीव ही करता है। ऐसे कार्य से ही दो हानियां होती हैं। एक वह जो पूर्व में हुआ किया हुआ पुण्य रहता है उसमें कमी आती है। दूसरा यह है कि वर्तमान में कामना करते हुए भावों को मलिन कर लेता है। इस कारण से सातिशय रूप पूर्ण पुण्य का बंद न होकर जो मात्रा में अल्प है और जिसकी गुणवत्ता में निरतिशयता है उस प्रकार का पुण्य बंद होता है। सो यह घाटा ही घाटा है। इस प्रकार का घाटे का कर्म अज्ञानी जीव ही करता है। सम्यक दृष्टि जीव को विवेकी कहा गया है, अतः वह इस प्रकार का सकाम रूप घाटे का धर्म नहीं करता। सम्यक्त्व सहित धार्मिक कार्य ही मात्र धर्म मात्र कर्म की निर्जरा में कारण होता है। चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव को 41 अशुभ कर्म नहीं बंधते, इतने कर्मों की निर्जरा संवर व निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा आत्मकल्याण व मोक्ष का कारण होता है। अतः ज्ञानी बनकर विवेक से प्रत्येक धार्मिक क्रिया करना चाहिए। कामना सहित धार्मिक कार्य सम्यक से रहित होते हैं। तथा सम्यक रहित ज्ञान और चारित्र दोनों व्यर्थ कहे जाते हैं। मेन बिंदु है, नोट करने लायक। कामना सहित धार्मिक कार्य सम्यक से रहित होते हैं तथा सम्यक तो रहित ज्ञान और चारित्र दोनों व्यर्थ कहे जाते हैं, अर्थात उनके माध्यम से आत्मकल्याण मोक्ष की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि कामना के कारण समस्त कर्मों का आश्रय व बंध भी होता है, निर्जरा नहीं हो पाती व निर्जरा के अभाव में जीव का कल्याण नहीं हो पाता है। अतः भगवान महावीर ने कामना रहित त्याग व तप व धार्मिक क्रियाओं को धर्म की कोटि में होने का उपदेश दिया है। वह कामना सहित त्याग व तप को अधर्म कहकर उसे संसार का कारण बताया है, क्योंकि ऐसे कामना सहित त्याग व तप संवर व निर्जरा के कारण नहीं माने जाते हैं। तात्पर्य यह है, कामना रहित जो सम्यक्तो पूर्वक धर्म किया जाता है उसी को सच्चा धर्म कहा है। उस सच्चे धर्म को करने से आत्मकल्याण व मोक्ष प्राप्ति का लाभ स्वतः हो जाता है। वह संसार सुख भी बिना मांगे उत्कृष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। अतः कामना रहित तप ही जीव के लिए कल्याणकारी है। जीव संसार सुख की इच्छा न करने पर भी चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि अच्छे पद पर पहुंच जाता है। धर्म की यह विशेषता है। धर्म निर्विकार होता है, वीतराग होता है। यदि धर्म ही करना है तो मन को वीतराग बनाना पड़ेगा। मन वीतराग हो गया तो उत्कृष्ट पुण्य कमा सकते हैं, और मन वीतराग नहीं बना तो उत्कृष्ट पुण्य का बंध नहीं होता, और फिर बंध ही नहीं होता है तो फिर उसका फल भी प्राप्त नहीं होता। जीवों को अज्ञानवश यह आदत पड़ जाती है, क्योंकि धर्म को देखा देखी करना प्रारंभ करते हैं। देखा देखी करने से कामना पूर्वक करना होता है। देखा देखी में गलतियां होती हैं। सोचे बिना ही कोई काम करते हैं तो उसमें अज्ञानता अवश्य होती है। अज्ञानता रहेगी तो उस कार्य का फल भी अपने को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वीतरागता धर्म है, वीतरागता बनने के लिए करना चाहिए ऐसा समझकर जो वीतराग बनने की ओर कामना रहित होकर धर्म के मार्ग पर लगेंगे वे स्वयं पुण्य का बंध भी करेंगे और उसका फल भी प्राप्त स्वयं करेंगे। सुख सब प्रकार के सुख कामना रहित होने पर मिल जाते हैं, इसमें कोई शंका भी नहीं है। एक बात ध्यान में रखने लायक इसमें होता है, कई जीव ऐसे सोचते हैं कि भगवान तो वीतरागी हैं, वो कुछ नहीं देते। सत्य है, भगवान वीतरागी हैं, कुछ नहीं देते। और देते कौन हैं? तो बाकी देव देवता ये रागी हैं, हमको देते हैं। फिर क्या यह सही है, वास्तव में देते हैं? न भगवान देते हैं, न रागी देवी देवता देते हैं। देने के क्षेत्र में दोनों ही नाकाम हैं। ऐसे देने का मतलब ये लो आ गए, झोली में भर लिया, दे दिया, ऐसा तो कोई देता नहीं। परंतु वस्तुतः देखो तो इसमें रागी देव तो कुछ नहीं देते और वीतरागी भगवान के सानिध्य से, उनकी आराधना से, उनकी पूजा से, उनकी भक्ति से, हम लोगों को क्या लाभ होता है? पुण्य का बंध होता है। ये पुण्य का बंध आप सोचो छोड़ा, ये पुण्य का बंध क्या रागी देवों की उपासना के काल में हो सकता है? फिर पुण्य ही बंद नहीं होता है तो रागी देव कैसे देंगे? सारा पुण्य पाप पर खेल है, पुण्य से मिलता है और पाप से जाता है। तो पुण्य का बंद किसके सानिध्य में होता है ये सोचो। वीतरागी भगवान के सानिध्य से, और रागी देव आदि के सानिध्य में जाने से पुण्य का क्या होता होगा? क्षय होता है। और पाप का क्या होता होगा? बढ़ जाता है। तो ये बात हमको समझ में आ गई तो हमारे जीवन में लोक मूर्तागत जो परंपरा से देखा देखी हमने जो कार्य क्रियाएं स्वीकार किया था, वो सभी कार्य क्रियाएं बंद होगी क्या? शुरू रहेंगी, बंद रहेंगी ना, क्या शुरू रहेंगी? फिर भी जब तक जीव के पास अंधविश्वास रहता है, अंधविश्वास किसको कहते हैं? लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं, लोगों को मिलता है इसलिए हमको भी मिल जाएगा, ऐसा भरोसा रखते हैं और देखा देखी करते जाते हैं। पर इससे कितना बड़ा नुकसान होता है, ये भगवान के वचन हैं। देखो क्या होता है क्या नहीं होता ये सब बता रहे हैं। वीतराग भगवान के सानिध्य में जाकर वीतराग भगवान की भक्ति करेंगे, पुण्य बढ़ेगा एक काम, दूसरा पाप घटेगा, तीसरा पुण्य का बंध होगा, चौथा पाप का संवर होगा, घटेगा यानी क्षय होगा, पहला हो गया। दूसरे नंबर में पूर्व में बंधा हुआ पाप घटेगा, डिस्चार्ज होगा। पूर्व में बंधा हुआ पुण्य वो चार्ज होगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसमें। ये तो पूर्व की बात हो गई। पूर्व की दो बातें, पाप क्षय होगा और पुण्य बढ़ेगा, और वर्तमान में भी निरंतर कोई ना कोई कर्म बंध रहा है तो हम भगवान के सानिध्य में हैं। कौन सा कर्म बंध रहा है? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म साति से पुण्य कर्म का बंध होगा यदि निष्काम है तो, भगवान के सामने, भगवान के सामने यदि कामना रहित हैं तो। लिखो नहीं, लिखते समय सुन नहीं पाएंगे और सुनते समय लिख नहीं पाएंगे। शास्त्र में तो चारों बातें लिखी हुई हैं, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो शास्त्र मिलने वाला है घर घर में, पढ़ लेना 10 बार। क्या समझाया? पूर्व के दो बातें, पूर्व में बंधा हुआ पुण्य और पूर्व में बंधा हुआ पाप, इनका क्या होता है? हाँ, पुण्य बढ़ता है, पाप का क्षय होता है, क्षय यानी निर्जरा। हाँ, और पुण्य बंधता नहीं, पूर्व का है ना, पूर्व का पुण्य क्या बंधेगा, बंधा हुआ है, बंधे हुए पुण्य का क्या होता है? बढ़ता है, वो चार्ज हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। और वर्तमान में जो कर्म बंधना चाहिए उनकी परिस्थिति क्या रहती है, इसमें भी दो बातें हैं। सातिशय पुण्य का बंध होता है यदि निष्काम है तो, सातिशय पुण्य का बंध होता है। यदि कामना सहित है तो अज्ञानी है तो पुण्य का बंध नहीं होगा। समझ में आ रही बातें? पकड़ो इसको, चिंतन करने के लिए मेन बिंदु है ये। ये नस पकड़ में आ गया ना तो पूरा आरोग्य ठीक हो जाएगा। ये अज्ञानता का नस पकड़ में आ गया कि हम अभी तक क्या क्या कर रहे थे, तो आप ज्ञानी बन जाएंगे और सही रास्ते पर चल करके सही काम करेंगे तो सही फल की प्राप्ति भी होगी। तो वर्तमान की दो बातें पकड़ लो, पुण्य और पाप का। पाप का क्या होगा? क्षय। क्यों कह रहे हैं? क्षय किसका होता है? पूर्व में बंधे हुए कर्मों को क्षय करना होता है। वर्तमान में जो आने वाले पाप और पुण्य हैं उनका क्या होगा? संवर होगा। पाप का संवर होगा और पुण्य का क्या होगा? बढ़ेगा, बंद होगा। और किस टाइप का बंद होगा? सातिशय रूप बंद होगा। यानी अज्ञानी जीव को जो बंद होता है वो निरतिशय होता है, हो भी जाए तो निरतिशय, अतिशयता नहीं रहती। यानी उसमें पुण्य की मात्रा कमी और पाप की मात्रा ज़्यादा, इस टाइप का बंधता है। तो ये निरतिशय माना जाएगा, जिसमें पाप भी मिश्रित हो वो निरतिशय है, और जिसमें पाप मिश्रण नहीं है, प्योर क्वालिटी का पुण्य है वो बंध रहा हो तो उसको सातिशय पुण्य कहते हैं। ये तो हो गया, सातिशय पुण्य का बंध हो रहा है, वर्तमान कर्म सातिशय पुण्य का बंध हो रहा है। पाप का क्या हो रहा है? संवर हो रहा है कहना चाहिए। संवर यानी क्या? संवर यानी बंद नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, द्वार बंद है। पाप का द्वार बंद है और पुण्य का द्वार खुला है। किसके सानिध्य में जाने से ऐसा हो रहा है? वीतरागी भगवान के सानिध्य में जाने से ही हो रहा है। तो किसकी भक्ति, किसको नमस्कार, किसकी आराधना करना चाहिए, सोचो। हमारा काम कहाँ बनने वाला है, सोचो। पुण्य बंद का काम होना, संवर का काम होना, पाप कर्म की निर्जरा होना, पूर्व में बंदे पुण्य कर्म में चार्जिंग होना, ये किसके सानिध्य में होगा? वीतराग भगवान के सानिध्य में ही होगा। समझ में आ गया गणित? हाँ, यही है। तो इसकी चिंता करना है कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो। चिंता करना है कि नहीं? किस टाइप का धर्म कार्य हमें करना है, इसकी चिंता करना है, या देखा देखी वही रास्ता पकड़ना है? जो लोग करते हैं करते जा रहे हैं, जो लोग करते हैं करते जा रहे हैं, वो करना है क्या? नहीं। इसलिए दर्शन पाठ में कहते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। क्या कहा इसमें? हे भगवान, आपको छोड़कर के इस दुनिया में कोई भी शरण के योग्य नहीं है। आपकी भक्ति से तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और यह कार्य चाहे सोमवार जाओ तो भी सिद्ध होगा, चाहे मंगलवार जाओ कोई भी सिद्ध होगा, किसी डेट पर जाओ, किसी वार में जाओ, हर दिन भगवान के दरबार में, आदिनाथ भगवान के दरबार में, उनके दरबार में ही हमारे लिए सारे सुखों की प्राप्ति होना है। तो अन्य देवों का क्या काम इसमें? इसी का नाम देवमूर्ता। देवमूर्ता का स्वरूप रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ है, पता है आप लोगों को? किसने लिखा है वो? समंतभद्राचार्य ने। उसमें श्रावकाचार्य है क्या मुनियों का आचार विचार है? श्रावकाचार्य। उसमें देवमूर्ता का स्वरूप क्या बताया है, पता है? देवमूर्ता का एक श्लोक है, श्लोक लिखा है, पता नहीं है? आप लोग श्लोक को जन्म देते हैं और श्लोक पता नहीं रहता। लड़के का नाम श्लोक रखा है और रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में जो श्लोक हैं उसमें से एक भी कंठस्थ नहीं किया है। देखो, आप श्रावक धर्म का पालन करते हैं, रत्नकरण श्रावकाचार में 150 श्लोक हैं, रोज पाठ करेंगे तो कंठस्थ हो सकते हैं। एक बार भी पाठ करोगे तो 5-6 महीने में पूरे कंठस्थ हो सकते हैं। आप पाठ नहीं करते, आपका संविधान ग्रंथ है, आपको श्रावक धर्म किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए ये उसमें लिखा है। आप स्वयं श्रावक हैं, श्रावक धर्म का निर्वाह आपका कर्तव्य है, तो इस ग्रंथ के एक एक संविधान सूत्र को कंठस्थ करना, याद रखना, कौन सी चीज कहाँ लिखा है, कहाँ आया है, ये संविधान ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? तो ये काम करो ना, तो ज्ञानी बन जाओगे, आचार विचारों में कोई गलती नहीं रहेगी, और गलती के कारण से हमारे पुण्य में घाटा नहीं आएगा, पाप का बंद नहीं होगा, सबसे हम बच सकते हैं। बच सकते कि नहीं? सभी से बच सकते हैं। कोई भी काम करना हो तो डरना नहीं चाहिए। आप लोग डरपोक ज्यादा हैं। डरपोक होने से सच्चे धर्म को कर नहीं सकते, विकल्प होते हैं, वो डर ही विकल्प का कारण बनता है। अभी तक ऐसा किया है तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार मन में कुछ न कुछ डर बैठता है, और वो जो डर है वो क्यों है इसका विचार करे तो अज्ञान के कारण से है। और शास्त्र का ज्ञान अगर हो गया और हम ज्ञानी बन गए तो वो डर रह सकता है क्या? अभी रहने दो बेटो, मन, लोगों का मन उस तरफ होता है। डर मन में क्यों उत्पन्न होता है? उसमें ज्ञान कारण है कि अज्ञान? अज्ञान कारण है। तो यदि आप ज्ञानी बनेंगे तो डर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ये कहा है, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टयः। ये भगवान महावीर के सूत्र हैं। घबराना नहीं चाहिए सुन करके, नहीं घबराने के लिए वो बता रहे हैं, और सुन करके हम घबराएंगे तो किस काम के? धर्माचरण जीवन में आने के लिए व्यक्ति निर्भय होता है पहले, उसके बिना धर्म जीवन में नहीं आ सकता। क्या होता है? निर्भय होता है, भय रहित होता है। इस श्लोक में कहा है, जीव चार बातों के कारण से धर्म को त्याग कर अधर्म के रास्ते को पकड़ लेता है और चलने लगता है। चार ही कारण हैं। कौन कौन से? भयाशा स्नेह लोभाच। भय सबसे पहले, भय। भय क्यों होता है? अज्ञान के कारण। भय, आशा, कोई हमारे अंदर आशा हो तो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं और उस आशा की पूर्ति का प्रयास करते हैं। पहले नंबर में भय, दूसरा आशा। भय, आशा, स्नेह, स्नेह उससे अनुराग रखते हैं, उसका स्नेह रखते हैं। स्नेह यानी मित्रता, हाँ, उनसे संबंध जोड़ते हैं, फिर अटैचमेंट होता है परस्पर में, स्नेह बढ़ जाता है, मित्रता बढ़ जाती है, फिर कैसे छोड़ें इस प्रकार भाव आते हैं। तो स्नेह के कारण से भी सम्यक तो छूट सकता है, भय के कारण छूटता है, आशा के कारण छूट सकता है, और स्नेह के कारण छूट सकता है। और कोई प्रलोभन देने वाला हो और हमारे मन में उस प्रलोभन को लेकर के लोभ जागृत हो जाए तो लोभ के कारण से भी छूट सकता है। कोई हमसे ये कह देता है कि मैं इतने वस्तुओं को देता हूँ, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तुम्हारा संकट मिट जाएगा, ये ले लो। धन दे सकता है, नौकरी दे सकता है, उद्योग दे सकता है, आपके परिस्थिति को ठीक कर सकता है, परंतु धर्म जा रहा हो उसके वजह से तो क्या ऐसी नौकरी को स्वीकार करोगे? ऐसे व्यवसाय को, ऐसे धन को स्वीकार करोगे? वो क्या छुड़ाना चाहता है? तुम वीतरागी भगवान के मंदिर में नहीं जाना, और जो मैं बता रहा हूँ वो देवता को पकड़ करके चलना, वो सुखी करेगा, वो भी सुखी करेगा और मैं भी सुखी करता हूँ, ऐसा कहता है और ऐसा प्रलोभन देता है। पहला प्रलोभन दे करके आपके लोभ को जगाता है मन में। आपके मन में लोभ जग गया और ये भाव आ गए, चलो ठीक है फिर छोड़ देते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं और शारीरिक सुख पाने के लिए इनका नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। तो वीतरागी देवशास्त्र गुरु के जो आप सेवक थे, सेवा को छुड़ा दिया और उनके देवता को भजने के लिए बताया, ये देवता हैं जो आपके लिए सदा सुखी रखेंगे, सदा सुखी रखेंगे, इनको भजो, ऐसा कहा। पैसा भी दे रहा है, नौकरी दे रहा है, आपके सांसारिक जीवन के सारी समस्याओं को दूर करके आपको भला कर रहा है। तो क्या ऐसे संदर्भ में आप इस धर्म को छोड़कर उसको ग्रहण करेंगे? क्या कट्टर रहेंगे? कट्टर रहेंगे और संकट आया हो तो भी कट्टर रहेंगे? तो ऐसा कट्टर रहने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, देखेंगे साहस भय है क्या? नहीं। अच्छा, तो कम से कम इतना पक्का है कि आपको भय नहीं है। कोई प्रलोभन जगाए, कोई भी प्रलोभन जगाए तो प्रलोभन में आएंगे नहीं, और कोई डरा दें डरेंगे भी नहीं, और स्वयं भी डरेंगे नहीं, और कोई डराएगा तो भी नहीं डरेंगे। भय, आशा मन में किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में आशा नहीं जगना, आशा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्या आशा उत्पन्न होती है? कभी कभी हो जाता है, संकट में आ जाते हैं तो मन में थोड़ी सी आशा की किरण जगती है। क्या हे भगवान, बहुत संकट में आ गए, आप ही मालिक, भगवान दया करो, आदिनाथ सोमार सोमार अवश्य आएंगे। परंतु जब तक ये संकट आया है, नहीं टलेगा, तब तक ये नरियल यहीं बंधा रहेगा। ये सब लोक मूर्ता है कि नहीं? लोक मूर्ता। नरियल क्यों बांध रहे हैं? फालतू क्रियाएं। नरियल बंदे बिना भी हमारा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? ज्ञान से करे, आशा को छोड़ करके करे, कामना को त्याग कर करे। आदिनाथ भगवान के पास कभी भी जाएं, किसी डेट पर जाएं, रात में जाएं या दिन में जाएं, आदिनाथ भगवान आपके हैं, आपके हैं कि नहीं? आपके हृदय के देवता है कि नहीं? हृदय के देवता है। रात में 12 बजे भी उठ करके आप उनका ध्यान करोगे तो आपके ऊपर वो करुणा करेंगे कि नहीं? करुणा करेंगे, धैर्य देंगे, वो डरो नहीं ऐसा कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे। वीतरागी भगवान न करुणा करते हैं न कहते हैं, लेकिन वीतरागी भगवान की भक्ति पूजा समर्पित होकर के यदि हम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो स्वतः हमारा भय दूर हो जाता है। स्वतः हमारे मन में जो भय उत्पन्न हुआ है, संकट उत्पन्न हुआ है जीवन में, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। ये सही है कि नहीं? इस पर विश्वास है कि नहीं? हाँ, मानतुंगा आचार्य श्लोक पढ़ने लगे तो श्लोक पढ़ना प्रारंभ करने से पहले आदिनाथ भगवान से क्या ये कहा था कि भगवान मैं 48 श्लोक बनाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा और जो 48 ताले लगे हैं एक एक करके टूटना चाहिए? निवेदन किया था भगवान से, निवेदन किया था निवेदन की जरूरत ही नहीं, आपके जीवन में भी कई संकट आ सकते हैं, धन का अभाव, संसार में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनका अभाव हो सकता है, पर आदिनाथ भगवान को क्या कहना पड़ेगा कि भगवान ये हो वो हो अमुक हो तमुक हो, कहना पड़ता है? नहीं, मन को विशुद्ध बनाओ, आदिनाथ भगवान की भक्ति में डूब जाओ, पुण्य बढ़ेगा पाप घटेगा, ऑटोमेटिक कार्य होते जाएंगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख, मांगने पर ही मिलता है ऐसा विश्वास करते हैं? नहीं, मांगने पर नहीं, मांगने पर मिलता है, मांगना और व्यर्थ है। नहीं मांगने पर जब मिलता है तो मांगना व्यर्थ है कि नहीं? किसी से कुछ नहीं मांगना, आपको कैसा होता है, थोड़ा भी संकट आ जाए नो, हे भगवान हे भगवान हे भगवान भगवान, संकट के काल में हे भगवान, न भगवान का नाम लेना ठीक है, लेकिन भगवान के सामने संकट का निवेदन करना आवश्यक नहीं है। भगवान का स्मरण करो, मन को पवित्र बनाओ, भगवान के गुणानुवाद में डूब जाओ। मानतुंग आचार्य जैसे 48 ताले 48 संकट आपके भी टूट जाएंगे। ऐसा ही करना, यही सच्चा मार्ग है, और इसमें ठोस विश्वास जगाना और सदा इसका चिंतन करते रहना, वीतराग रखना अपने मन को। भगवान वीतरागी है कि नहीं? वीतरागी है, उनको पुण्य कर्म का बंध कितना होता रहता है? वीतरागी होने के कारण उनको पुण्य बंध होता रहता है कि नहीं होता है? कितना होता है? नहीं होता है, पुण्य बंध होता भी है नहीं ये मालूम नहीं है। देखो, वीतरागी भगवान को सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है, सर्वोत्कृष्ट। ऐसे दुनिया में ऐसा एक भी जीव नहीं है, संसारी जीव, जो उनके बराबर पुण्य बंध कर रहा हो। सातिशय पुण्य का, यानी जिसमें पावरफुल, यानी ऐसा बंधा और ऐसा फल दे करके चला गया, बंधा और फल दिया चला गया, ऐसा पुण्य का बंध भगवान को होता ही रहता है और बंधते ही फल दे रहा है। और हमारा क्या होता है? बंधता है, बहुत समय तक फल नहीं देता, जब उदय में आता है तब फल दे करके चला जाता है। आखिर ऐसा हमको क्यों होता है? हमको लेट फल मिलता है उसका, और भगवान को बंधते ही फल मिलता है, ऐसा क्यों? उनमें और हमारे में क्या अंतर है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम संसारी हैं और हमारे जीवन में राग विद्यमान है, हम अभी वीतरागी बने कहाँ हैं? राग सहित अवस्था में पुण्य जो बंधता है, बंध तो जाता है लेकिन उतना क्वालिटी भी नहीं रहती जितने भगवान की है, क्वालिटी भी उतने उत्कृष्ट नहीं रहती, और बंधा हुआ जो पुण्य है वह कालांतर में आकर के, यानी समय लेट हो जाता है हमारे लिए, कालांतर में फल देता है। ये किसके कारण से हो रहा है? राग के कारण से। तो राग के कारण से जो हमारे लिए पुण्य का बंध होता है, उसमें फल देने का काल ज्यादा लेट रहता है, बहुत समय के बाद देगा, तत्काल नहीं मिलेगा, ये राग के कारण से हो रहा है। और जो मिल रहा है, फल मिल रहा है, वो उत्कृष्ट नहीं मिलता जैसे भगवान का है, उसकी तुलना में हमारा पुण्य कमजोर रहता है। फिर भी ठीक है, चक्रवर्ती बना सकता है ये पुण्य, चक्रवर्ती पद तक ले जा सकता है, राग सहित है फिर भी चक्रवर्ती पद तक हमको ले जा सकता है। तो भगवान के पुण्य में और हमारे पुण्य में इतना बड़ा अंतर है, उनका पुण्य सातिशय पुण्य है, बंधते ही फल देता है, और हमारा पुण्य बंधने के बाद कुछ समय बाद फल देता है। एक बात, जो जीव चक्रवर्ती आदि बनते हैं, ये क्या कर्म करने से बनते हैं, क्या कर्म करने से चक्रवर्ती पद मिलता है? कौन, श्रावक या मुनि? श्रावक मुनि दोनों नहीं, गलत हो गया। श्रावक तीर्थंकर तो बन सकता है पर चक्रवर्ती नहीं बनेगा, और मुनि तीर्थंकर भी बन सकते हैं और चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। चक्रवर्ती बनने लायक जो पुण्य होता है ना, वो मुनि अवस्था में ही कमाना संभव है। कहीं भी शास्त्रों में ये उदाहरण नहीं मिलता कि एक श्रावक इतना पुण्य करके चक्रवर्ती बना, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें उदाहरण नहीं दिया, चक्रवर्ती कैसे बनता है ये जरूर कहा है, पर वो मुनि बने बिना नहीं बन सकता। वो कालांतर में मुनि बनकर पुण्य कमाएगा, ये सम्यक दर्शन की महिमा है, और सम्यक दर्शन के फल को दर्शाया है। पहले अधिकार में अंत में ये श्लोक आता है, तो इसमें ये बताया है, ये सम्यक दर्शन ही जब फलीभूत होकर के मुनि पद पर जाएगा, मुनि बनने के बाद जो पुण्य संग्रह होगा उससे चक्रवर्ती भी बन सकता है। वो भविष्य को भी शामिल करके कथन किया है, यही श्रावक मुनि बनेगा जब, तब चक्रवर्ती भी बनेगा। पर ये जरूर है कि श्रावक मुनि बने बिना तीर्थंकर जरूर बन सकता है। जैसे राजा श्रेणिक मुनि तो बने नहीं थे, क्या बने थे? पर तीर्थंकर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो श्रावक को तीर्थंकर कर्म का बंध हो रहा है, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का कर्म का बंध हो रहा है, और मुनि को भी होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध, पर श्रावक को उतना पुण्य नहीं होता जितना पुण्य मुनि कमाते हैं, और वो उस पुण्य, जिस पुण्य से वो चक्रवर्ती बनते हैं अगली पर्याय में। ऐसा मतलब प्रथमानुयोग में कहो, इन ग्रंथों में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जो श्रावक मुनि बने बिना चक्रवर्ती बने हों, पर ऐसे उदाहरण जरूर मिलते हैं। एक श्रावक मुनि बन जाता है, त्याग तपस्या करता है और उसके फल को मांग बैठता है, तो निदान बंद कर लेते हैं। निदान बंद का मतलब मैं चक्रवर्ती बनूं, ऐसी संकल्पना निदान बंद कहलाता है। मैंने जो मुनि अवस्था धारण की, मुनिव्रत धारण की, इसके पुण्य के फल से मैं चक्रवर्ती बनूं अगले भव में, ऐसा संकल्प करता है तो निदान बंद होता है। तो ऐसा यदि करेगा तो उसका गुणस्थान भी नहीं रहेगा, और वो जो पुण्य बंधता था, सातिशय पुण्य का बंध अभी तक होता था पूर्व में, वो भी नहीं होगा, और गुणस्थान से च्युत होकर के नीचे आएंगे। तो उनका कमाया हुआ जो पुण्य रहता है वो पापानुबंधी पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य रहता है पहले, और उसको क्या कर देता है निदान बंध के परिणामों से, पापानुबंधी पुण्य के रूप में कन्वर्ट करके रख देता है। और उस पर्याय से तो डायरेक्ट चक्रवर्ती तो नहीं बन सकते, उस पर्याय से मुनि पर्याय से तो पहले देव पद को धारण करेंगे और देव पद को धारण करने के पश्चात फिर देवगति से मनुष्य गति में आएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। तो निदान बंद करके भी चक्रवर्ती बन सकते हैं, बनते हैं, ऐसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो नरक गए हैं, सुभोम चक्रवर्ती जो नरक गए हैं, ये नरक क्यों गए? चक्रवर्ती बनकर नरक चले गए। ये निदान बंद के पुण्य से वे दीक्षा धारण करने के आत्मकल्याण के भाव जागृत नहीं होंगे। निदान कितना बड़ा डेंजर है देखो। निदान परिणामों से यदि हम अपने पुण्य को कन्वर्ट करके पापानुबंधी पुण्य के रूप में कन्वर्ट करके रख देते हैं, चाहे वो श्रावक हो चाहे मुनि हो, निदान बंद कर लेते हैं तो बहुत डेंजर परिस्थिति। अब वो पुण्य तो रहता है, उस पुण्य के फल को भोगने के लिए दुर्गति में अवश्य जाना पड़ता है। जीव दुर्गति जा करके पाप का फल भोग करके आता है। पहले तो चक्रवर्ती पद का पुण्य भोगेगा और लास्ट में कहाँ जाएगा? नरक गति में जाएगा। उसको पुण्य कमाने के भाव नहीं आएंगे, लास्ट में वो उसको पलटा देगा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है चक्रवर्ती पद प्राप्त होने पर, पुनः वहाँ सम्यक दृष्टि बन सकता है, पर पूर्व में निदान बंद के कारण जिस पुण्य को पापानुबंधी पुण्य के रूप में कन्वर्ट किया है उसका फल ठीक नहीं रहता। उस पुण्य के कारण से वो दीक्षा के भाव पुनः नहीं कर सकते, मुनि बनने के भाव नहीं आते। तो ऐसे दो चक्रवर्ती, कौन कौन? सुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ये मुनि दीक्षा नहीं ले पाते, वैराग्य नहीं होता। वैराग्य नहीं हुआ उनको और रिजल्ट क्या निकला? नरकायु का बंद किया। देखो सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन जब तक रहता है तब तक नरकायु का बंद तो होता नहीं, पर सम्यक दर्शन च्युत हो करके नरकायु को बांध कर फिर ये नरक चले गए। अब भविष्य में इनका कल्याण अवश्य होगा, वो सब पाप कर्म का भोग करके जब वहां से निकलेंगे, अंत में देखो उनके परिणाम बिगड़ गए। किसके? उन दोनों चक्रवर्ती के, सुभम चक्रवर्ती के परिणाम बिगड़ गए और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के भी परिणाम बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए। बिगड़ने के कारण सम्यक दर्शन से चुत हो गए, क्योंकि कामना जगी, कामना पूर्वक धर्म पुनः करने लगे, फल मांगने लगे। क्या कारण बना मालूम है ना? कथा पड़ी है शुभम चक्रवर्ती की कथा? हाँ, आम 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 की इच्छा। और क्या क्या? हाँ देव। फिर क्या किया उन्होंने? हाँ, नमोकार मंत्र पर, पानी पर नमोकार मंत्र लिखकर उस पर पांव रखने में भी संकोच नहीं किया। अपने प्राणों को बचाने के लिए उन्होंने नमोकार मंत्र के ऊपर पांव रखा, अपने प्राणों को बचाने के लिए पांव रखा। तो उसी समय सम्यक दर्शन से च्युत होकर नरकायु को बांधकर किस नरक में गए? सातवें नरक में गए। ऐसा उदाहरण शास्त्र पढ़ने के लिए मिलता है। निदान बंद से पहले स्वर्ग गए और वही निदान बंद का जो पुण्य रहता है उसी पुण्य के फल से वो पहले तो स्वर्ग में गए पापानुबंधी पुण्य से, कालांतर में चक्रवर्ती पद पर जाने लायक पुण्य तो कमाया ही था सो चक्रवर्ती भी बन गए, परंतु निदान बंद का जो पुण्य था वो पुण्य हमारे लिए हितकारी नहीं होता, जब तक है तब तक संसार में रखता है और अंत में परिणामों को बिगड़ने में निमित्त बनता है। तो निमित्त बनने के उपरांत हम सम्यक दर्शन से च्युत हो जाते हैं, परिणाम ही ऐसे हो जाते हैं, फिर नरकायु का बंद होता है, फिर नरक के दुख को भोगने के लिए जीव नरक में चला जाता है। क्या बोले? पहले मुनि अवस्था से स्वर्ग गए, स्वर्ग से चक्रवर्ती बने, चक्रवर्ती बनकर क्या हुए? नरक गए। तो क्या पूछना है इसमें? नहीं, निरतिशय, बाकी सब सातिशय पुण्य वाली, निदान बंद जिन्होंने किया था ऐसे चक्रवर्ती दो ही हैं, ये बताया ना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सुबोम चक्रवर्ती, बाकी सभी सातिशय पुण्य कमाने वाले वो तो मोक्ष गए हैं, स्वर्ग में गए, स्वर्ग में भी जा सकते हैं। सातिशय पुण्य का फल स्वर्ग भी है और मोक्ष भी है। स्वर्ग और मोक्ष ये चक्रवर्ती बनने वालों के लिए रिजल्ट है, फल है। वापस कौन चक्रवर्ती? एक बार चक्रवर्ती बनने के बाद दोबारा चक्रवर्ती नहीं बनते, वापस कैसे बनेंगे? एक बार पेट भर खाने के बाद कोई भी पेट भर दोबारा नहीं खाता, खाता है? तो इन उदाहरणों से, इन कथाओं से हमको क्या लेना है शिक्षा? शिक्षा ये लेना है, यदि हम वृत्ति बन गए तो निदान बंद नहीं करना, मुनि बन गए तो भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करना, मैं चक्रवर्ती बनूं ऐसी इच्छा नहीं करना, मुझे भोग वैभव सामग्री मिले ये भाव नहीं करना, कोई भी संकट आ जाए तो भोगो भोग की इच्छा नहीं करना, और मन को पवित्र रखना, मन को वीतराग रखना, निष्काम रखना, एक ही कर्तव्य, ऐसा यदि रखेंगे तो हमारा व्रत मोक्ष को भी देगा और संसार सुखों को भी देगा। तो उस समय हम कैसे चक्रवर्ती बनेंगे? चक्रवर्ती हम सही चक्रवर्ती बनेंगे, जो नरक नहीं जाने वाले ऐसे चक्रवर्ती बनेंगे। फिर उस चक्रवर्ती भाव में या तो मुनि बनकर स्वर्ग जाएंगे या तो मोक्ष जाएंगे, ये दो जाने के मार्ग हैं। तो इस पाठ का ये सारभूत विषय है। इस पाठ में एक लाइन और आई है, क्या है? श्रावक को सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत 41 अशुभ कर्मों का बंद नहीं होता, ये आया है शंटर में, देखो बीच में आया है 41। चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव को 41 अशुभ पाप कर्म का बंधते नहीं। इतने कर्मों का संवर और निर्जरा होती है। 41 कर्म, वो 41 कर्म कौन कौन हैं? जानना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पर निकालो, इसी पुस्तक में पेज नंबर 42 निकालो। निकाला तो अंतिम क्वेश्चन क्या है पढ़ो। अनंतानुबंधी कषायोदय जनित अविरति से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है और वे कौन सी हैं? अनंतानुबंधी कषाय की अविरति से 25 प्रकृतियों का बंध होता है, वे निम्न प्रकार हैं। ये 25 हैं, ये 25 नहीं बंधते। किस जीव को? सम्यक दृष्टि जीव को। आप सम्यक दृष्टि हैं तो इतने कर्मों को जीवन भर कभी नहीं बांधेंगे, ये पाप कर्म हैं। 25 के 25 इसमें से एक ही केवल पुण्य कर्म हो सकता है, बाकी पाप हैं। उद्योत एक है। हाँ ठीक है, वो भी बता रहे हैं। ये 25 हैं, ये 25 और इसमें और 16 मिलाना है, 16 और मिलाना है, ऊपर हैं पांचवे। मिथ्यात्व की प्रधानता से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है और वे कौन कौन सी हैं? मिथ्यात्व की प्रधानता से 16 प्रकृतियों का बंध होता है, वे निम्न प्रकार हैं। मिथ्यात्व दूसरे नंबर में बाजू में, हुंडक संस्थान, नपुसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्ता सर्पाटी का सौनन, एकेंद्री जाति, द्विइंद्री जाति, तीनेंद्री जाति, चतुरेंद्री जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 16 और नीचे के 25 अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अप्रशस्त विहायोगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु, उद्योत, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, वज्रवृषभ नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन और कीलित सहनन, ये 25 हो गए। ये 25 और वो 16 कितने? 41। 41 कर्म यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो बंधेंगे नहीं। यदि आप निष्काम धर्म करते हैं, कामना रहित होकर धर्म करते हैं, ये 25 नहीं बंध सकते। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो बचो इन कर्मों के बंध से। टोटल कर्म कितने? 148 कर्म में से 41 नहीं बंध रहे हैं, तो कितना माइन बच गए? 107। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 148 में बंद योग्य तो 120 ही हैं, बाकी तो बंद योग्य ही नहीं है, तो वो बंधते भी नहीं। जो बंद योग्य हैं वो बंधते हैं। तो बंद योग्य कितने हैं? तो 120 हैं। बंद योग्य 120, तो जो बंद योग्य नहीं हैं वो बंधते नहीं। तो वो कैसे? देखो 148 में 120 घटाओ, 28 प्रकृति को अलग कर दो, और 120 जो बंद योग्य हैं इसमें 41 को घटा दो, सेवेंटी नाइन ही बंधेंगे। 120 में से 79 बंधेंगे और 41 नहीं बंधेंगे। ये किसका प्रभाव है? ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक दृष्टि किस प्रकार का धर्म करता है? कामना रहित होकर के धर्म करता है। कामना को त्यागने मात्र से 41 कर्मों का बंध आपको होगा नहीं। और प्रतिमाधारी बनेंगे तो और 10 का बंध नहीं होगा। देखो इसी 41 पर देखो, 41 पेज, ठीक है। बंद प्रत्यय किसे कहते हैं, वे कितने हैं, जिसकी उपस्थिति की प्रधानता से जितने कर्म प्रकृतियों का बंद होता है उसे बंद प्रत्यय कहते हैं। उसके 5 भेद हैं। कर्म का जो बंद होता है, बंद में 5 कारण हैं। कौन कौन से ये 5? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व यानी जब हम मिथ्यात्व करते हैं, कामना सहित होकर के कोई धार्मिक अनुष्ठान क्रिया करते हैं, उस समय हमको मिथ्यात्व का बंध भी होता है और हम पहले गुणस्थान में रहते हैं और मिथ्यात्व का बंध होने के कारण सभी कर्मों का बंध होगा। मिथ्या दृष्टि 120 कर्मों का बंध कर सकता है। 120 का बंद कर सकता है। तो मिथ्या ये कारण क्या पड़ेगा, मिथ्यात्व कर्म का उदय आने पर जीव को उस कर्म के प्रभाव से कैसे परिणाम होते हैं सुनना। पहले सुन, जो सुना रहे हैं उसको दिमाग में ले या करो। मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव होने पर मिथ्यात्व परिणाम होंगे कि किस कर्म का प्रभाव है, मिथ्यात्व कर्म का ही प्रभाव है। हमारे लिए कभी कभी अंधविश्वास होता है, किसके कारण से होता है, मिथ्यात्व के कारण से। हम कभी कभी जो असत्य है उसी को सत्य समझने लगते हैं, ऐसी बुद्धि हो जाती है। ये किस कर्म का प्रभाव है, मिथ्यात्व कर्म का प्रभाव है। यानी जब जब ऐसा होता है तब समझना चाहिए कि हमको मिथ्यात्व कर्म का उदय है और उसका प्रभाव है, इसलिए असत्य ही सत्य समझ में आ रहा है, ऐसे भ्रमित होता है जीव। भ्रमवश सही को गलत समझता है और गलत को सही समझने लगता है। ये मिथ्यात्व कर्म का प्रभाव है। और सही को सही और गलत को गलत ऐसा समझना ये सम्यक्त्व के प्रभाव से ही संभव है। जब सम्यक दृष्टि बनेगा, भय आशा नहीं, भय नहीं, स्नेह नहीं, लोभ नहीं, निर्विकल्प निष्काम धार्मिक क्रियाओं को पवित्र मन से करता है, तो उस वक्त वह इन कर्मों को नहीं बंधता। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5। अब देखिए, अविरति यानी अविरति व्रत रहित रहना, ये अविरति है। व्रति बनना विरति है और व्रति नहीं बनना अविरति है। तो अविरति के कारण से भी कर्मों का बंद होता है। वो कितने कर्मों का बंद होता है ये बताया है। अविरति के कारण से 25 कर्मों का भी बंद होता है, 10 कर्मों का भी बंद होता है और 4 कर्मों का भी बंद होता है। और व्रत धारण करेंगे तो इनमें से इतने कोई भी बंद नहीं होंगे, 10 का भी नहीं, 25 का भी नहीं और 4 का भी नहीं। व्रति बनेंगे तो कौन से व्रति, मुनि महाराज बनेंगे तो ये 16 का भी बंद नहीं होगा, 25 का भी बंद नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा और 4 का भी नहीं होगा। मिथ्यात्व के नीचे कितना लिखा है, 16, ऊपर गुणस्थान लिखा है उसका। तो मिथ्यात्व दृष्टि जीव रहेगा तो गुणस्थान कौन सा रहेगा, पहला। और अविरति से 25 का, 10 का और 4 का बंद होता है। इनका गुणस्थान कौन सा होता है, 1 से 5 तक, यानी 1 से 5 तक इनका बंद हो सकता है। तो, क्या अविरति 105 कहाँ? देखो अविरति का मतलब कषायें चार प्रकार की मालूम है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख 24 ठाना में आ रहा है दोपहर को, तो ये सब पढ़ना जरूरी है। 24 ठाना भी साथ चलना चाहिए, तब ये भी समझ में आएगा आगे जाकर। तो 24 ठाना तो आप लोगों का तो चूक ही रहा है, 24 ठाना का टाइम दुकान में जा रहा है। जो वो दुकान शुरू रहेगी तो ये दुकान बंद करनी पड़ेगी, ये दुकान शुरू करोगे तो वो दुकान बंद करना पड़ेगा, तो एक घंटे दुकान वो बंद करेंगे तो कोई हानि थोड़ी है। करो, ये दुकान खोलोगे ना तो वो उस दुकान में आते ही ये दुकान फल दे देगा। एक घंटे के लिए बंद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद नहीं करो तो किसी दूसरे को बिठा के आओ, तो आओ तो सही, ये दुकान में ही ज्ञान मिलने वाला है। अभी जो कमा रहे हैं आप, ये सच्चा धन कमा रहे हैं। जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, सम्यक ज्ञान से आपको रास्ता मिल रहा है। आओ दोपहर में भी, आप निकालो टाइम। 24 ठाना बहुत अच्छा है, ये उसमें ये सब गुणस्थान बता रहे हैं, मार्गना स्थान बता रहे हैं। वो समझ में आने के बाद ये कर्म सिद्धांत का भी विषय समझ में आएगा। ये इतना नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए तो समय बहुत चाहिए ना, तो उसकी पढ़ाई होना चाहिए। जैन धर्म पढ़ाई के बिना जीवन में नहीं आ सकता। सच्चा ज्ञान जीवन में आएगा तो वो ज्ञान से आएगा, और ज्ञान के लिए समय देना पड़ता है। समय दिए बिना तो होता नहीं, समय देने पर ही समय ज्ञान होगा। टाइम हो गया, क्या पूछा था? अनंतानुबंधी, हाँ, पांच गुणस्थान कैसे? तो देखो तीन कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण। ये तीन कषाय हैं। प्रत्याख्यानावरण का उदय पांचवें गुणस्थान तक है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय चौथे गुणस्थान तक है, और अनंतानुबंधी का उदय पहले और दूसरे दो गुणस्थानों में है। तो पहले दूसरे गुणस्थान में जो अनंतानुबंधी का उदय है वो अविरति है, यानी असंयम के भावों को उत्पन्न कराता है। असंयम क्या है? छह काय की जीवों की हिंसा करना और इंद्री विजयी नहीं होना, ये असंयम है। तो यदि हम पहले दूसरे गुणस्थान में हैं तो वहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय जनित अविरति भी है, क्योंकि वहाँ उसका उदय है, और प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी उदय है तो उसका भी अविरति है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी उदय है और उसका भी अविरति उदय में है। धीरे धीरे समझेंगे इस बात को, एक साथ समझ में नहीं आएगा, टाइम भी खत्म हो गया है, समझेंगे कल के दिन और आगे बढ़ेंगे विषय। कल याद करना इसी प्रश्न को, ठीक। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरुमा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद।